جزاكم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो मिसाली बेटा हम पढ़ रहे हैं मिसाली मर्द की किताब में से, और इसमें हमने पेज नंबर 56 बल्कि 57 तक शुरू कर लिया था। जो इसका ज़ेली इन्वान चल रहा था वो था मगरबी मुआशरा और कुफर की कानून साजियां। ठीक है, मगरबी मुआशरा मिसाली बेटा के अंदर क्यों आ गया? ठीक है, मगरबी मुआशरा इसका तस्करा मिसाली बेटा का मौजू था, इसके अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना, बस बता देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया और अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कुरान मजीद की ये आयात हैं और सहाबा इकराम के ये वाकयात हैं और फलाना और ढमकाना बहुत कुछ है माशाल्लाह हमारे ट्रेडिशन के अंदर। ठीक है, हमारे ट्रेडिशन में मिसाली बेटा मिसाली औलाद के लिए इनफ मटीरियल मौजूद है। तो फिर हजरत जो है वो मगरबी मुआशरे और कुफर की कानून साजियां क्यों लेकर के आए हैं? जरा आप इसका जवाब दे करके देखें। जी, ये आज इसमें मुंतजर है आप लोगों के जवाबात का। हाँ जी, बिकॉज वी लुक अप टू देम। ठीक है, तो लेके क्यों आए हैं? आजकल लोग बेटियों को मगरब सेंड कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। अच्छा, बेटियों को? खैर, बेटियों की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ तो औलाद की बात हो रही है, दोनों की। तो बिकॉज वी लुक अप टू देम के आगे कुछ अगर आप इसको मुकम्मल कर लें तो बात समझ में भी आ जाए। बिकॉज वी लुक अप टू देम सो वॉट, और हम उनसे असर लेते हैं। सही। अच्छा, कुदरतन हमारी जो खवातीन की सुबह वाली क्लास होती है बुध को, तो उसमें मिसाली औरत की किताब चल ही रही है, लेकिन उससे पहले जो सब जो पीरियड होता है, जो घंटा होता है ना, वो होता है हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बहश्ती जेवर में से। ठीक है, तो उसमें जो है वो किताब सुलूक वल एहसान चल रहा है आजकल। तो उसमें हम जो पढ़ रहे थे ना, वो अखलाक जमीमा और उनका इलाज, ये पहला हमने टॉपिक पढ़ा किताब सुलूक और एहसान में से, अखलाक जमीमा और उनका इलाज। और उसके बाद फिर जो अगला टॉपिक था जो कि आजकल हम पढ़ रहे हैं, वो है अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके। तो वहां पर भी हमने ख्वातीन से ये सवाल किया था कि हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अखलाक जमीमा को पहले क्यों लेकर के आए और अखलाक हमीदा को बाद में लेकर के क्यों आए? ठीक है, अखलाक जमीमा का जिक्र करना ये तो बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ होती है, तो नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव बात को पहले लेकर के आना। भाई पॉजिटिव बात को पहले लेकर के आए, पहले अखलाक हमीदा के बारे में बता देते और फिर अखलाक जमीमा के बारे में बताते। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए ना इंसान को आखिर। तो हजरत हकीमुल उम्मत जो है वो नेगेटिविटी से बात क्यों शुरू कर रहे हैं? ठीक है, हम रहते तो ईस्ट में हैं लेकिन मुतासर वेस्ट से हैं। जी, तो नेगेटिव को पहले लेकर के आना यानी किसी की नफी करना। ठीक है, किसी की नफी करना ये उस वक्त जरूरी हो जाता है कि जब नेगेटिव चीज जो होती है ना वो इंसान के ऊपर सवार हो गई हो। ठीक है, नेगेटिव चीज जब सवार हो गई हो ना किसी के ऊपर, तो पॉजिटिव की जगह नहीं बाकी बचती, उसके ऊपर पॉजिटिव चीज लादने की जगह बाकी नहीं बचती। तो उसके लिए लाजमी है कि आप पहले नेगेटिव का बोझ उतारें, पहले बुरी चीज का, नेगेटिव बात का बोझ उसके ऊपर से उतारें। जब बोझ उतरेगा तब पॉजिटिव के लिए जगह बनेगी। ठीक है ना, जब आप नेगेटिव को उतारने की फिक्र नहीं करते ना, ऐसी पॉजिटिव लादना शुरू कर देते हैं, तो फिर वही होता है, 40 40 साल से तफसीर पढ़ रही हैं लेकिन पर्दा नहीं कर रही है ना, सूरह अजाब भी पढ़ रही हैं, सूरह नूर भी पढ़ रही हैं, लेकिन पर्दा अभी तक शुरू नहीं किया, बेपर्दगी से अभी तक तौबा नहीं करी। क्यों? इसलिए कि आपने पॉजिटिव लादना शुरू कर दिया, तफसीर लादनी शुरू कर दी, ठीक है ना, आपने उलूम लादने शुरू कर दिए, और जो है वो जो मनफी था बेपर्दगी की मोहब्बत, राइट, अपनी जो है वो गैर महरमों के सामने अपने आप को दिखाना, तो इसकी तो नफरत पैदा ही नहीं हुई, ठीक है ना, तो फिर इल्म को कोई फायदा नहीं हुआ, तौबा अभी तक नसीब नहीं हुई। हाँ, ऊपर बुरका चढ़ा लिया, बुरका जरूर चढ़ा लिया बहुत सारी औरतों ने, लेकिन बुरका चढ़ाना डज नॉट मीन पर्दा, बुरका चढ़ाना डज नॉट मीन पर्दा, ये भी बिल्कुल क्लियर कर लो अपने जहन में, अगर कोई इश्काल है तो पूछ लीजिए कि हाउ कैन इट नॉट मीन पर्दा, ठीक है। तो ऐसे इनका फायदा नहीं होता, इस वजह से जो हकीम होते हैं ना, हकीम जो के मसले को समझते हैं और उसका इलाज करना चाहते हैं, तो फिर वो नेगेटिव को उतारने के ऊपर पहले ही मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव की मेहनत करते हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत, राइट, अहकमुल हाकिमीन, वो तो खैर यानी बल्कि हकीमों के सबसे बड़े हकीम अहकमुल हाकिमीन, तो खैर वो हाकिम के उसमें आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कलमा नसीब किया ना हम लोगों को, वो क्या था, ला इलाहा, फिर उसके बाद फरमाया इल्लल्लाह, अपने नाम को भी मौखर कर दिया, हालांकि अल्लाह का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए था, अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं, अल्लाह ताला का नाम तो हर चीज के ऊपर गालिब है, तो कलमा तो कुछ इस तरह होना चाहिए था कि अल्लाहु मौला वला मौला लक वला मौला लहुम, राइट, अल्लाहु मौला वला मौला इल्लल्लाह, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने अपने नाम से शुरू नहीं किया कलमे को, किससे शुरू किया, ला के कलमे से शुरू किया, पहले काटो उसको जो तुम्हारे ऊपर सवार हुए हैं झूठे माबूद, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है वो मेरा इस बात करो, तो इसी तरीके से हमारे ऊपर आज कौन सवार हुआ हुआ है, हमारे ऊपर जो है वो मगरबी तहजीब सवार हुई हुई है, ठीक है ना, हमारे रग रग रेशे रेशे के अंदर उनकी मोहब्बत और उनकी अजमत और उनकी चाहत पैवस्त हुई हुई है, ठीक है ना, तो जब तक ये नहीं निकलेगी ना, तो उस वक्त तक हमारे को समझ में नहीं आएगा। उसी तरह हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ने अखलाक जमीमा का पहले जिक्र किया, क्यों, इसलिए कि अखलाक जमीमा जब इंसान के अंदर मौजूद होते हैं ना, जब तक वो ना निकलें उस वक्त तक अखलाक हमीदा की जगह ही नहीं बनती, ठीक है, तो पहले उसकी नफी करी, उसके बाद फिर अखलाक हमीदा का इस्बात किया, उसको जो है वो फिर इन्फोर्स किया, और तौबा से बात शुरू करी, वहां पर अखलाक हमीदा की बात भी कहां से शुरू करी, तौबा से शुरू करी, क्योंकि बगैर तौबा के अखलाक हमीदा पढ़ पढ़ा करके पल्ले कुछ नहीं आना, ठीक है, तो मगरबी मुआशरा और कुफर की कानून साजियां, क्योंकि हम अपने जो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग है ना, वो हम मगरबी मुआशरे से लेते हैं, तो वो बता रहे हैं कि मगरबी मुआशरे को की हकीकत भी तुम समझ लो। तो फिर ओल्ड एज होम्स का क्याम जो है वो हमने पीछे पढ़ लिया था और आपको बताया था कि ऐसा नहीं था कि बच्चे वहां पे बड़े परेशान हो रहे थे अपने वालदैन के लिए, तो हुकूमत ने जो है ना फिर उनकी परेशानी दूर करने के लिए जो है वो ओल्ड एज होम्स बना दिए, ताकि बच्चे बेचारे परेशान ना हो, है ना, बड़ी अच्छी बात है, तो क्या बात है भाई, बच्चे परेशान हो रहे थे अपने माँ बाप के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, ना ऐसा था ना ऐसा है, ठीक है, बच्चे बच्चे कोई परेशान नहीं हो रहे थे, ये तो एक मुहावरतन हजरत ने बात कह दी है, मुहावरतन, ठीक है, मुहावरे का मीनिंग जो है ना वो डायरेक्टली समझ में नहीं आता, आसमान से गिरा खजूर में अटका, समझ में आ गई आपको बात, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये मुहावरा है भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी तब बात समझ में आएगी, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तो हजरत ने भी ये बात जो है ना कि माँ बाप के लिए बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मुहावरतन कहा है, इट डज नॉट मीन कि वहां के बच्चे परेशान हो रहे थे अपने बाप बाप के लिए, तो मकसद क्या था कि बच्चों को बाहर निकालो ताकि दे आर इजी टू ग्रैब, ठीक है ना, माँ बाप के इन्फ्लुएंस से और माँ बाप की प्रोटेक्शन से उनको बाहर निकालो, क्योंकि जैसे भी माँ बाप हैं बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए था, वैसे उनकी परवरिश नहीं कर रहे, वैसे उनकी तरबियत नहीं कर रहे, वैसे जो है वो उनको ओन नहीं कर रहे, बल्कि उनको जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, हुकूमत के निजाम के पास आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मामता की मोहब्बत होती है, एक जो है ना वो बाप की जो है फिर भी कुछ ना कुछ मोहब्बत होती है, तो उससे भी इनको निकालो, ठीक है, ताकि फिर हम अच्छी तरीके से इनको ग्रैब कर सकें। तो कुदरतन आज सुबह खवातीन की क्लास में भी यही बात चल रही थी कि बुरका पहना करके भी वो आज औरत को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, एक वो आ गई है पाकिस्तान की पहली बुर्का पोश, बिल्कुल काला ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक काले बुर्के वाली जो है ना वो पायलट साहिबा आ गई है, ठीक है ना। क्यों पायलट साहिबा काले बुर्के में आ गई है, है? के तुम बुर्का पहन करके भी पायलट बन सकती हो, राइट। जैसे पिछले दिनों आया था ना, बुर्का पहन करके भी तुम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर के जो है बेहतरीन डिग्री हासिल कर सकती हो, तो भाई आप बुर्का पहन के पाकिस्तान गए ना, पायलट भी आ गई है, क्योंकि आजकल बुर्के वाली है वो थोड़ी ज्यादा हो गई होंगी। कुछ दिनों पहले तक जो है वो स्कार्फ वाली ज्यादा थी, ठीक है ना, तो उन्होंने स्कार्फ वाली पायलट को बना करके दिखा दी थी, शहीद भी हो गई फिर वो, ठीक है। तो मार्केट की डिमांड जो होती है ना उसके हिसाब से फिर काम किया जाता है। मकसद क्या है कि औरत बाहर निकले, बाहर निकलो तुम, आओ जरा वर्क प्लेस के अंदर, ताकि तुम्हें हम फिजिकली भी ग्रैब कर सकें, तो ताकि तुम्हें हम फिजिकली भी ग्रैब कर सकें। घर में रहोगी तो अभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए कि घर का ताला तोड़ करके अंदर जाकर के फिजिकली ग्रैब करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जस्ट वेयरिंग बुरका इज नॉट बेटर देन नॉट वेयरिंग इट एट ऑल, यानी सदर खोलना इस सोच के साथ कि ये मुकम्मल पर्दा नहीं है। बात कुछ और हो रही है, आप जो है वो यानी नॉर्थ पोल की बात हो रही है, आप साउथ पोल की बात शुरू कर दें तो ऐसे तो बात नहीं बनती है ना, ठीक है ना। बात जो है वो ओवरऑल सोच की कर रहे हैं आप जो है वो उठा करके, बुरका पहनना नॉट बेटर देन वेयरिंग इट एट ऑल वाली बात शुरू कर दी आपने, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो घर से बाहर निकालना असल में ये है ना, एंड दे आर एट इट, ठीक है ना। औरत को घर के अंदर टिकने नहीं देना उन्होंने, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने फिर खवातीन से सवाल भी किया कि भाई एक तो बाहर निकालना जो मकसद है कि वर्क प्लेस में आओ तो जरा बराबर बैठ करके मेरे साथ ट्रेनिंग तो हासिल करो, है ना, क्योंकि जो ट्रेनर होता है वो तो मर्द ही होता है, अब्बा तो नहीं ट्रेन कर रहे होते, राइट। भाई तो नहीं होता ट्रेन करने वाला, भाई तो नहीं होता जॉब के अंदर उम्मीद तौर पर, इल्ला माशाल्लाह कभी किसी का भाई उसका एम्प्लॉयर हो गया, वरना तो ऐसा नहीं होता ना, मेहरम मर्द जो है वो आपका एम्प्लॉयर होगा या आपका ट्रेनर होगा। तो बराबर में बैठ करके जरा ट्रेनिंग वेनिंग मेरे साथ सीखो, ठीक है ना। बात आगे बढ़ेगी, तुम बच जाओगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बच्ची तो नहीं बचेगी, तुम बच जाओगी तो कोई बात नहीं, तुमसे इंस्पायर होकर के जो दूसरी लड़कियां बाहर निकलेंगी ना घर से, उनको नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है ना, वो तो नहीं बच सकती हमसे। तो ये तो एक चीज हो गई। फिर हमने खवातीन से सवाल किया कि बाहर निकाल करके वुमेन को ग्रैब करना आसान हो जाता है, घर के अंदर ग्रैब नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना, दबोच नहीं सकते उसको, दूसरा क्या है उनको मकसद, दूसरा इनका क्या मकसद होता है कि औरत को घर से बाहर निकालने का, ये भी खवातीन से भी पूछा था, आप भी बता दें, ठीक है, कि खातून को घर से बाहर निकालने के से जो है वो और भी बहुत सारे मकासद जुड़े हुए होते हैं, वो दूसरा मकसद क्या है इसका। खवातीन ने तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था, बिल्कुल सही एक्यूरेट, आपने से कोई क्लास ले रहा होगा तो उसको शायद पता भी होगा जी, औरत को बाहर निकालने से दूसरा कौन सा बड़ा मकसद पूरा होता है, खानदान की तबाही, ठीक है ना। क्या मतलब खानदान की दवाई, आपने एंड रिजल्ट बता दिया जी, आपने तो चीटिंग कर ली है ये तो आपकी चीटिंग है, आप चुप नहीं रह जाता थोड़ी देर तक, थोड़ी देर हमें भी पता है ना कि आप सही है, खैर चीटिंग इन्होंने कर लिया है लेकिन सही जवाब बता दिया है, ठीक है ना। कि दूसरा फायदा ये होता है दे आर एबल टू ग्रैब द चिल्ड्रन, क्योंकि अब अम्मा के पास तो वक्त है नहीं कि वो बच्चों को जो है वो खुद से उनकी परवरिश करे, खुद से उनको जो है वो जहन बनाए, खुद से उनको जो है वो अल्लाह का बंदा बनाए, तो अब वो क्या करेगी, वो आउटसोर्स करेगी ना अपने बच्चों को, कोई और यार ये वाला काम कर दे, कोई और ये वाला काम करे, तो जब ये आउटसोर्स करेगी तो सिस्टम के हवाले करेगी ना, और सिस्टम क्या करेगा, वही करेगा जो कि अमरीका में किया, ठीक है ना, ये ओल्ड एज होम्स का क्याम जिस मकसद से है कि वो ताकि अब डायरेक्ट जो है वो बच्चों को ग्रैब किया जा सके, ठीक है ना, माँ बाप से उसको छुड़ाओ ताकि बच्चों को सिस्टम जो है वो ग्रैब कर सके और अपना बना सके। अब वो सिस्टम जो है वो माँ बाप का तो नहीं बनाएगा ना फिर उसके बाद, ना तो उसने अल्लाह का बनाना है, ठीक है ना, ना उसने रसूल का बच्चों को बनाना है ना, ना उसने जो है वो माँ बाप का बच्चों को बनाना है, भाई जिसका सिस्टम है वो सिस्टम वो तो अपना बनाना चाहता है ना, सिस्टम क्यों बनता है, सिस्टम का निजाम क्यों बनता है, सिस्टम के अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग क्यों दी जा रही होती है, सो दैट यू बिकम लॉयल टू द सिस्टम, यू बिकम लॉयल टू द सिस्टम, नॉट टू योर मदर, नॉट टू योर फादर, राइट, नॉट टू एनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, बट टू द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो फिर उसके बाद घर कहां से बचेगा भाई उसके बाद, राइट, फिर घर तो गया खड्डे में, सही है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे हमारे ऊपर, हमें अक्ल सलीम अता फरमा दे, ठीक है ना। तो ये है भाई, सही है। अब अपनी अपनी फिक्र करें, अपनी अपनी औलाद की फिक्र करें, ताकि कब्र में जब जाएं तो फिर कुछ जवाब देने के लिए बाकी बच चुका हूं हमारे पास। आगे फरमाते हैं कि बाप की वफात पर बेटा टस से मस नहीं हुआ। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी के जो आम एग्जाम्पल्स हैं। तो फरमाया कि मामला यहाँ तक पहुंचा कि हमारे एक जानने वाले सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, जिन्होंने यूके इंग्लैंड से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। वो कहने लगे कि मेरा एक अंग्रेज दोस्त था, मैं कभी कभी उसके दफ्तर जाया करता था। एक दिन मैं उसके दफ्तर गया तो मेरे बैठे बैठे उसकी सेक्रेटरी आई और कहने लगी कि सर, हस्पताल साहब के लिए कॉल आई है। अब हम लोगों की तो तबीयत ऐसी होती है कि हस्पताल का नाम आ जाए तो फौरन ही मुतवज्जो हो जाते हैं, ठीक है, कि अल्लाह खैर करे, न जाने क्यों अस्पताल से कॉल आई है। लिहाजा मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अस्पताल से क्यों कॉल आई है, तो वो बड़ा पुरसकून अंदाज से कहने लगा कि कोई खास बात नहीं है, मेरे वालिद बीमार थे और अस्पताल में दाखिल थे, अभी अभी डॉक्टर का फोन आया है कि उनकी वफात हो गई है। तो कहने लगा कि मैं बड़ा हैरान होकर हुआ कि नौजवान बेटे को बाप की वफात की खबर मिली और टस से मस नहीं हुआ। बहरहाल मैंने उससे कहा कि मैं चलता हूँ, आपको तो जाना, मैं चलता हूँ, आपको तो जाना होगा, ठीक है, यानी आपको तो जाना होगा भाई, बाप की मौत की खबर आई है तो आई शुड लेट यू गो। तो वो कहने लगा नहीं, आप बैठे, मुझे नहीं जाना। तो मैंने कहा कि क्या आप उनकी लाश लेने और कफन दफन का सिलसिला करने नहीं जाना। कहने लगा नहीं, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है कि मैं मसरूफ हूँ, वो किसी फ्यूनरल सर्विस कफन दफन का इंतजाम करने वाली कंपनी को फोन कर दे ताकि वो लोग उसको ले जाएं और कफन दफन का इंतजाम कर दें, और मैंने डॉक्टर को कह दिया है कि बिल मुझे जमा करवाने के लिए भेज देना, ठीक है, पेमेंट मैं कर दूंगा, एहसान, ठीक है ना, बाप के ऊपर एहसान कि मैं पेमेंट कर दूंगा। ये भी एक मुआशरा है कि जिसमें बाप और बेटे का ये ताल्लुक है कि जवान बेटे के पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अस्पताल जाके आखिरी मरतबा अपने बाप का चेहरा ही देख ले। वो कहता है कि मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम उनको दफन कर देना और मुझे बिल भेज देना, मैं उसे जमा करवा दूंगा, ठीक है। न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ बंदा नवाज में। हमारी अमान तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए सिखाए हुए तरीके में है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के वास्ते से हमें सिखाया है, हमारे लिए तो सिर्फ वहां अमान है, हम कहां अमान ढूंढते फिर रहे हैं। हम कैसे अल्लाह और रसूल के नाफरमानों के, उनको ना मानने वालों के, उनका इनकार करने वालों के पास जा करके अपनी कामयाबियां और अपनी मुआशरे को बेहतर बनाना और न जाने क्या क्या हम सीखने के लिए उनके पास जा रहे हैं, हमें कहीं अमान नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो जिस तरीके से जहन्नुम के अंदर हमारे आगे आगे जा रहे हैं, उसी तरह हम उनके पीछे पीछे जहन्नुम के अंदर जाएंगे, दुनिया की जहन्नुम भी और आखिरत की जहन्नुम भी, ठीक है। तो लौट जाना चाहिए ना, हमें अपने माद की तरफ लौट जाना चाहिए, ठीक है। ये तो नफरत के काबिल चीजें हैं, ये बातें तो नफरत के, हमें नफरत क्यों नहीं होती, हम इतना कॉम्प्रोमाइजिंग और इतना। एक बच्चा मुझसे बहस करने लगा, राइट, बच्चा, कि ये जो इनकी किताबें होती हैं तो यानी इसमें तो बस फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसके अंदर तो बस जो है ना वो आपको यानी कोई मैसेजेस तो कोई होते ही नहीं है इसके अंदर, राइट। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इनकी जो बुक्स होती है ना उनके अंदर सबलिमिनल मैसेजेस भी होते हैं और बहुत सारे तो प्रोमिनेंट मैसेजेस भी होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम कैसे उनकी बुक्स पढ़ पढ़ करके हम उनके वे ऑफ लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने अंदर, हम उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में जो है ना उनके यानी यानी आइडियोलॉजी और जिंदगी गुजारने का तरीका, इन चीजों को ये हमारे अंदर दाखिल हो रही होती हैं, हम इनके बारे में इम्यून हो रहे होते हैं, हम इनके बारे में डिसेंसिटाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बजाहिर पता नहीं चल रहा होता। आप इनकी नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप इनकी कहानियां पढ़ते हैं, आप इनके बच्चों की कहानियां पढ़ते हैं, राइट, वो सारी चीजें आपके लिए नॉर्म बन रही होती हैं क्योंकि नफरत नहीं होती आपके अंदर। बच्चे को क्या पता कि किस चीज से नफरत करनी है, किस चीज से मोहब्बत करनी है। उसको ला करके आपने ढेरों कहानी की किताबें दे दी जो कि बेस्ड इन वेस्टर्न कल्चर है, नॉन मुस्लिम कल्चर है, यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर है, ठीक है ना, कि भाई इसकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। सही, बच्चे की अंग्रेजी तो अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद उसका ईमान क्या बचा, उसके बाद उसका सोच क्या क्या से क्या बन गई, इसका उसका हमें पता ही नहीं चलता, हमें हमें फिक्र ही कोई नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो आजकल अफलातून बच्चों को हमने बना दिया है कि वो उल्टा जाए वो आगे से बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई सबलिमिनल मैसेज नहीं होते, बस जो लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है सो लैंग्वेज है, जो साइंस है वो साइंस है। ठीक है ना, साइंस के अंदर जो है वो जो फरिश्तों की नफी हो रही होती है, फरिश्तों की नफी से तो इंसान ईमान पर ही कायम नहीं रहता फिर उसके बाद, राइट, उसका ईमान ही खत्म हो जाता है। फरिश्तों की के ऊपर तो हमारा ईमान अब तक नहीं बन सका, तो तकदीर के ऊपर कहाँ से ईमान बनेगा, जो कि सबसे मुश्किल चीज होती है। ठीक है, लेकिन हमें परवाह ही नहीं इन सब बातों की, उसके बगैर ही माशाल्लाह मस्जिद की दौड़, मुल्ला मुल्ला की दौड़ मस्जिद, और यही हमारा ईमान है सारा का सारा। ये तो फिर कब्र में जाने के बाद पता चलेगा कि तुम्हारा दीन था क्या, राइट, तुम्हारा दीन था क्या। उस पर रटी रटाई चीजों तो भूल जाएगा ना इंसान, जैसे तोते साहब को भूल जाती है, जब उसकी मौत आती है तो वो टाइम टाइम बोल रहा होता है, हालांकि जिंदगी के अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा था, लेकिन जब मौत आती है तो टाई टाई कर रहा होता है उस वक्त। उसी तरीके से कब्र में जाकर के असल टाई टाई निकल रही होगी। किसके ऊपर तुम्हारा इतमाद था, इन साइंस की किताबों के ऊपर तुम्हारा इतमाद था, या नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर तुम्हारा इतमाद था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना फिर बहुत देर हो चुकी होगी, वापस दुनिया के अंदर आने का मौका नहीं होगा। अनोखा मुकदमा, एक और वाकया वेस्टर्न वर्ल्ड का, 1985 के करीब की बात है, कि अमेरिका की एक रियासत कनेक्टिकट में एक माँ ने अपने बेटे पर केस कर दिया। माँ ने कहा कि मेरा खाविंद फौत हो गया और मैं अपने जवान बेटे के साथ एक घर में रहती हूँ। मेरा केस ये है कि मेरे उस बेटे ने कुत्ता पाला हुआ है, ये दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे उस कुत्ते के साथ गुजारता है, उसको नहलाता है, खाना खिलाता है और भगाने के लिए बाहर लेके जाता है। मैं उसकी माँ हूँ, जब मैं उसे कहती हूँ कि बेटा दिन में 5 मिनट के लिए मेरे कमरे में भी आ जाओ ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूँ, तो मेरी बात नहीं मानता। लिहाजा अदालत उसको हुक्म दे कि दिन में 5 मिनट के लिए ये मुझे जरूर मिला करे और मुझे चेहरा तो दिखा दिया करे। अब उस पर बेटे ने भी वकील किया और माँ ने भी वकील किया, इसके बाद टीवी पे पूरी कौम को दिखाई गई। तकरीबन 1 साल लंबा केस चलने के बाद जज ने यह फैसला किया कि कुत्ता चूंकि लड़के ने खुद पाला है, लिहाजा कुत्ता उसकी जिम्मेदारी है, चाहे 3 घंटे लगें या 5 घंटे लगें, बहरहाल ये उसको लगाने पड़ेंगे और कुत्ते का ख्याल रखना पड़ेगा। जहां तक बूढ़ी माँ का ताल्लुक है, तो ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसका कोई मसला है तो दरख्वास्त दी जाए ताकि हुकूमत इस औरत को ओल्ड एज होम में भेज दे। हम बच्चे को नहीं कह सकते कि वो 5 मिनट के लिए अपनी माँ के पास जरूर जाए, ये बच्चे की अपनी मर्जी पर मुनहसर है चाहे जाए या ना जाए, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर हो चुका था। ठीक है ना, और वो ऑफिशियल जो एज है उनकी 18 साल, अब 18 साल के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप के ऊपर, पहले कौन सी थी जो कि 18 साल के बाद अब जो है वो एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। अब जहां माँ और बेटे का ये ताल्लुक होगा, माँ और बेटे का ये ताल्लुक होगा, वहां माँ बाप की क्या इज्जत और कदर होगी। ठीक है, अब तो पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो आपने जो है वो अपने ही गुजार दी, नफ्स और शैतान के हवाले अपने आप को करके, अपनी ख्वाहिशात के हवाले। माँ ने कौन सा बेटे का कोई हक अदा किया था? ठीक है ना, ये तो हजरत चूंकि बेटे के साइड वाली बात कर रहे हैं ना, कि बेटा अच्छा हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए, जैसे कि हमारे दीन ने जो है वो औलाद को कहा है, जैसे भी माँ बाप थे, काफिर थे, मुशरिक थे, तुम्हारा उन्होंने हक नहीं अदा किया, लेकिन तुम फिर भी अपना काम करो, अल्लाह की रजा की खातिर तुम अपना काम करो, आखिरत की जजा की खातिर तुम अपना काम करो। ठीक है ना, लेकिन इसकी दूसरी साइड, फ्लिप साइड भी तो सामने होनी चाहिए ना कम अज कम, कि माँ ने कौन सा बेटे का हक अदा किया होता जब वो बेटा छोटा था, जब वो उसकी गोद में था, राइट, उस वक्त भी तो उसको डे केयर के हवाले किया था ना उस माँ ने। ऐसा नहीं होता वहां के मुआशरे में, और अब हमारे मुआशरे के अंदर भी, राइट, हमारे रिश्तेदारों में ऐसी औरतें मौजूद हैं, ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी को जो है ना वो डे केयर के हवाले करके जॉब करने जा रही होती हैं, राइट, या बाकायदा डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जा रही हैं, और बच्चे को जब डे केयर के हवाले कर दिया है, नैनी के हवाले कर दिया है। ठीक है, तो हुकूक नहीं अदा करने, सिर्फ अपने हुकूक की फिक्र है, अदा नहीं करने की फिक्र है, बस अपने हुकूक की। हाँ, मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरे पांव तले जन्नत आ चुकी है, अब जो है ना ये तो बस मेरे पांव चाटता रहे हर वक्त। ठीक है ना, औलाद को तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, माँ की नाफरमानी हराम है, बुखारी शरीफ की रिवायत। ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी के सूरत में तो जाए माँ की फरमाबरदारी, लेकिन अदरवाइज जो है वो हराम है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान किया ना माँ के ऊपर कि तुमने मेरा हक अदा नहीं किया, तुमने मेरा हक अदा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे पैर के तले जन्नत रखी है। वरना नबी अलैहिस्सलाम ये भी तो कह सकते थे ना कि जो माँ अल्लाह का हक अदा करती है और अल्लाह के नबी का हक अदा करती है उसके पैर तले जन्नत है, राइट? लेकिन हदीस मुबारक तो ऐसी नहीं है। हदीस मुबारक का तो हर किस्म की माँ के पैर तले जन्नत वाली हदीस है। तो कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। क्या हमें एहसान नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनका बंदा बन करके जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, राइट? हमें तो सारी दुनिया की फिक्र पड़ी हुई होती है सिवाय अल्लाह के, जिसने कि हमें माँ बाप दिए, जिसने हमें इज्जत दी, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अल्लाह ताला को राजी कर सके, अपने नेक अमाल कर सकें, ठीक है ना? लेकिन हमें तो दूसरों के हकूक की किसी की परवाह नहीं, ना तो औलाद के हकूक अदा करने थे, तो अल्लाह के नबी और अल्लाह के हकूक कैसे अदा करेंगे, ठीक है? तो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, अहले मगरिब की नई तहकीक, ठीक ना? वही बात, ढंडोरा पीटना और लकीर को पीटना, सारा को तो सांप निकल गया आगे, अब जो है वो लकीर को पीट रहे हैं। लकीर को पीट के क्या समझ रहे हैं, जैसे सांप मार देंगे। हालांकि लकीर तो सिर्फ सांप का असर है जो कि जमीन में पैदा हो गया है, ठीक है ना? रेत में जब सांप जाएगा तो एक लकीर बन जाती है ना, तो सांप तो निकल गया, सांप को तो मारा नहीं आपने वक्त पर जब मारना चाहिए था। अब लकीर को मार मार करके आपको क्या फायदा होगा? तो यही जो है वो, यानी मगरिब का भी यही यही तरीका है, और हम जो मगरिब के दुम्मे पीछे पीछे भाग रहे हैं हमारा भी यही तरीका है, लकीर पीटते रहते हैं, ठीक है? तो आप तहकीक कर रहे हैं कि माँ बाप के साथ जो है ना वो उसने सलूक होना चाहिए। तहकीक से क्या क्या कर लोगे तुम्हें तहकीक करके, ठीक है? सर्वे करके दिखाना चाहते हैं कि जैसे बहुत फिक्रमंद है सबसे ज्यादा इंसान, भाई फारिग है, फारिग, कुछ करने को काम है नहीं इनके पास, ठीक है ना? तो जाहिर है वो हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कभी किसी कुत्ते पे रिसर्च कर रहे हैं, कभी जो है वो अफ्रीका जाके रिसर्च कर रहे हैं, कभी नॉर्थ पोल पे रिसर्च कर रहे हैं, कभी माँ बाप के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, राइट? तो भाई रिसर्च के ऊपर ग्रांट्स मिलती है ना, पैसे मिलते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो पैसे कमाने के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई नई से नई चीज़ लेकर के आओ, ठीक है ना? मुआशरे में जो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं थी, माँ बाप के हकूक के बारे में बात करना, चलो जी उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अच्छी ग्रांट मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से। बहरहाल हजरत तो यहाँ पे कुछ और प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, तो फरमाते हैं कि जब उन्होंने देखा कि बच्चे बिल्कुल ही माँ बाप से कट गए और माँ बाप को जवाब देते हैं कि आप अपनी जिंदगी गुजारें और मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें, तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि जब हमने बहुत ज्यादा कर लिया, टू मच हो गया भाई, कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ। हजरत मुहावरतन ये बात फरमा रहे हैं, हजरत को अच्छी तरह से पता है, मैं जानता हूँ हजरत को आपसे ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत को अच्छी तरह पता है कि इनको कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ है, तो मुहावरतन फरमा रहे हैं, बयान जब होता है तो फिर बयान में इस तरह के मुहावरे अदा हो जाते हैं। बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, जवान खुद गलत फैसला ले लेता है, लिहाजा उनका कोई ना कोई सरपरस्त होना चाहिए, यानी कोई ना कोई समझाने वाला होना चाहिए। चुनाचे आजकल कुफर के माहौल में जो रिसर्चेज आ रही हैं, इसमें नए सिरे से फिर बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखो और उनकी बातों को सुना करो। एक रिसर्च है कि ड्यूटीज ऑफ ए सन टूवर्ड्स द पेरेंट्स, बेटों को अपने वालदेन के हकूक कैसे अदा करने चाहिए, ये कुफर की दुनिया की रिसर्च है, ठीक है ना? यानी हजरत फरमा रहे हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम को तुम नहीं मानते है ना, तो जिनको मानते हो उनको तो उनकी तो मान लो, जिनको मानते हो उनकी तो मान लो, लेकिन हमने तो ना नबी को माना ना नबी की मानी, जिनको हमारे नफ्स के खिलाफ जो बात करेगा हमने उसकी नहीं माननी। असल मसला सारा का सारा नफ्स का होता है, मगरब वाले भी आकर के हमारे नफ्स के खिलाफ बात करेंगे ना, हमने उनकी भी नहीं माननी है, मसला जो है वो मगरिब का भी नहीं है, मसला सारा का सारा इंसान के नफ्स का होता है। तो बहरहाल कहते हैं कि ये कुफर की दुनिया की रिसर्च है, वो कहते हैं कि यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। डोंट फॉरगेट पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, ये ना भूलो कि माँ बाप वक्त के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको खिदमत की अब ज्यादा जरूरत है। चीन ने एक नया कानून बनाया है, चिल्ड्रन हैव टू टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेरेंट्स, इफ दे डू नॉट विजिट देम ऑफन दे विल हैव टू पे फाइन एंड दे कैन बी सेंट टू द जेल, ठीक है? अब जो है वो कानून साजी भी, वो तो कानून साजी तो माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन सिस्टम का दाएं बाएं हाथ का खेल होता है, तो बच्चों को अपने वालदैन को जज्बाती सहारा देना पड़ेगा, उनकी खिदमत भी करनी होगी। अगर बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मिलते हैं, उनसे ताल्लुक नहीं रखते, तो उनको जुर्माना भी हो सकता है, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। यूक्रेन में एक नया कानून बना कि पेरेंट्स कैन सू देयर चिल्ड्रन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, कि अगर बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं रखते तो माँ बाप उनसे माली मदद हासिल करने के लिए उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं। जापान में जहाँ पर तेजी से बूढ़े लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहाँ पर एक कानून बनाया गया कि द गवर्नमेंट विल हेल्प देम टू गेट केयर टेकर फॉर देयर पेरेंट्स। अगर बच्चे खुद इतना बोझ नहीं उठा सकते तो वो हुकूमत को दरख्वास्त देंगे और हुकूमत उनकी मदद करेगी ताकि उनके माँ बाप का ख्याल रखने वाला कोई हो। बूढ़े लोगों की देखभाल, बहरहाल साबित हुआ कि कुफर को कानून बनाने पड़े कि बच्चों को माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा। इस वक्त जापान में जो सबसे अच्छी कंपनीज चल रही हैं, ये कंपनीज वो हैं जो बूढ़े लोगों को खिदमतगार मुहैया करते हैं। सारी उम्र उन्होंने कमाई करी होती है, अब इतना कमाने के बाद जो है ना, जब ये बूढ़े होते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, बड़े अमीर होते हैं ये बूढ़े वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और जापान में क्या है तो ईस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में है, लेकिन एटम बम से सबको मार देने के बाद उन्होंने उनको पूरा का पूरा अपने रंग में रंग दिया। ठीक है, पूरा अपने रंग में रंगा हुआ है, तो बेसिकली वो वेस्ट ही है। जापान जो है ना वो ईस्ट नहीं है, वो वेस्ट ही है। ठीक है ना, कान को इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बेहतरीन कंपनीज वो हैं जो के क्योंकि कस्टमर ज्यादा है ना, अब जिस कंपनी के कस्टमर सबसे ज्यादा होंगे और सबसे ज्यादा तगड़े कस्टमर होंगे तो वही जाहिर है सबसे ज्यादा कामयाब कंपनी होगी। तो फरमाते हैं कि जी यहाँ यानी 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए बुकिंग करवाई जाती है, और बूढ़े बंदे ने घर के जिस काम के लिए बुकिंग करवाई हो तो कोई बंदा आएगा और उस काम को इतनी देर में करके चला जाएगा। फर्ज करो कि उसने बुकिंग करवाई कि मुझे बातें करनी है, तो 1 घंटे के लिए एक औरत आएगी, उससे फीस लेगी और उसके साथ किसी भी मौजू सियासत या उसके किसी भी पसंदीदा मशगले पे बात करेगी, और बातचीत करके घड़ी देख के पूरे 1 घंटे के बाद वापस चले जाएगी। यानी बूढ़े माँ बाप साथी के लिए तरस रहे होते हैं, ये कंपनियां जापान में सबसे ज्यादा फरोह पा रही हैं। ठीक है, तो उनके बूढ़ों ने तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ा होता ना, तो उनका कसूर है भाई। क्यों ने तुमने हक की तलाश क्यों नहीं करी, तुमने कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? अगर कुरान शरीफ पढ़ लेते तो सबसे छोटी सूरतों में ही तुम्हें अपना हल मिल जाता। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह वरअयता अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तवाबा। इसके अंदर हर बूढ़े का जवाब मौजूद है, हर बूढ़े के हर मसले का हल मौजूद है इसके अंदर। ठीक है ना, वेन यू हैव डन योर जॉब, ठीक है ना, इससे तफसीर इशारी सूरह नसर से तफसीर इशारी क्या है, वेन यू हैव डन योर जॉब, वेन यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब, ठीक है ना, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ठीक है कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम की जॉब डन। ठीक है, तो नाउ व्हाट डू, यू रिटायर, अब आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना, आपकी
हाँ
जॉब खत्म हो गई,
हाँ
आप जो है वो माशाल्लाह 60 साल के हो गए, 55 साल के कहीं हो गए, कहीं पे 80 साल के हो गए, आप रिटायर हो गए, अब क्या करो, अब लोगों से गप्पे लगाओ है? अब जो है वो सियासत को फॉलो करो, अब जो है वो फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाकर वीडियोस सुनो, ये काम करो रिटायरमेंट के बाद। नहीं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तस्बीह करो तहमीद के साथ अपने रब की और उससे माफी मांगो, इन्नहु का वस्तग़फिर इन्नहु कान तवाबा, यानी अब तुम जो है ना वो अपने रब के साथ फुल टाइम जुड़ जाओ। जवानी में तुम फुल टाइम जुड़ नहीं सकते थे क्योंकि जवानी में तुम्हें जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, तुम्हारे जिम्मे जॉब लगाई गई थी, चाहे औरत हो या मर्द हो, तुम्हारे जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जब तुम जवान थे। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर से खत्म हो चुकी हैं, अब तुम खालिस हो जाओ अपने रब के लिए, 100% हो जाओ अपने रब के लिए। ठीक है, तो अब काफिर के पास तो ये नहीं होता ना, काफिर के पास तो ये नहीं होता ना ऑप्शन कि वो अपने रब के साथ जुड़ जाए। ठीक है, काश कि मुसलमान के पास ये ऑप्शन है, लेकिन मुसलमान इस ऑप्शन को अवेल भी कर ले। राइट, अब औलाद कितनी ही सआदतमंद हो, अब औलाद कितनी ही नेक हो, औलाद कितनी ही वालदैन की खिदमत करने वाली हो, लेकिन वो वालदैन के साथ वैसे टाइम तो नहीं लगा सकती है ना, कि उनके साथ बैठ करके बातें करती रहे, उनके साथ जो है वो टाइम इतना स्पेंड करती, भाई उसकी जिम्मेदारी है, उसने जॉब पर भी जाना है, उसने, औरत की जॉब किचन में होती है, औरत की जॉब घर के बच्चों को संभालना होता है, और असल जॉब तो हम कर भी नहीं रहे, हम तो उठा करके बच्चों को आउटसोर्स कर देते हैं। अगर असल जॉब औरत करना शुरू कर दे, उसके पास कहां से वक्त आएगा कि वो बूढ़ों के साथ बैठ करके बात करे। असल जॉब तो औलाद की परवरिश और घर का, घर गृहस्थी होती है। हमारे तो औरतों ने जॉब ही छोड़ दी या छुड़वा दी गई उनसे, ठीक है ना। लेकिन अगर असल दीन की लगाई हुई जॉब औरत करे तो उसके पास से वक्त नहीं होता। और मर्द को तो वैसे भी बाहर के काम करने होते हैं, नौकरी भी करनी है, ग्रोसरी भी लानी है, दावत और तबलीग की जिम्मेदारी कौन करेगा। आसमान से फरिश्ते आकर के दीन की दावत का काम करेंगे। ये मर्द हैं जिनके जिम्मे अल्लाह ताला ने दीन की दावत का काम लगाया है। और खुदा ना खास्ता जो है वो लड़ाई झड़ाई हो गई तो फिर जा करके मारपीट भी मर्दों ने करनी होती है जा करके ना, दीन की खातिर, ठीक है। तो भाई अल्लाह है ना, अल्लाह का कुरान नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी नहीं है भाई, जिक्र असकार नहीं है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के लिए तैयारी करना, मुलाकात होने वाली है। पहले तो एक शुबा था कि नहीं, अभी तो 20 साल पड़े हुए हैं, अभी तो 30 साल पड़े हुए हैं, अभी तो 40 साल पड़े हुए हैं, कर लूंगा बाद में। अब तो शुबा भी खत्म हो गया, अब तो मोमबत्ती का मोम भी खत्म हो गया, अब तो जो दिया था उसका तेल भी खत्म हो गया। अब तुम किस शुबे में पड़े हुए हो कि अभी तो बहुत दिन है, अल्लाह से बाद में लॉ लगा लूंगा, अभी तो यूट्यूब देख लूं जरा, अभी तो सियासत को फॉलो कर लूं जरा, राइट, बाद में अल्लाह को टाइम दूंगा, बाद में अल्लाह का कुरान समझूंगा, बाद में अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करूंगा, बाद में मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा, तस्बीह करूंगा, तहमीद करूंगा, राइट। इससे ज्यादा बदबख्ती और क्या हो सकती है। यानी जिसके पास शुबा का कोई कोई वजह हो, वो अगर गलत काम करे तो भाई शुबा का फायदा होता है ना, एक बेनिफिट ऑफ द डाउट कहते हैं इसको। लेकिन जिसके पास शुबे के असबाब खत्म हो गए हो, वो अभी तक धोखे में मुबतला है, तो इससे ज्यादा और क्या क्या बदनसीबी होगी। इससे ज्यादा हमें अभी फौरन तौबा कर लेनी चाहिए, अभी अभी तौबा करनी चाहिए। जितना हम वक्त जाया कर रहे हैं ना, हम तैयारी करें अपने बुढ़ापे की। अभी सारे लोग तकरीबन जवान हैं यहाँ पर, सब जो है बुढ़ापे की तैयारी करें। जिसने जवानी में अल्लाह को याद नहीं किया ना, जिसने जवानी में जो है वो वक्त जाया करने की आदत को नहीं छोड़ा, वो बुढ़ापे में जाकर के एकदम से फ्लिप नहीं हो सकता। नामुमकिन तरीन चीज होती है, मुश्किल तरीन चीज होती है, अगर जगह पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है बुढ़ापे में जाकर के अपने आप को चेंज कर लेना, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगो तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, रास्ते तो अल्लाह ताला ने बंद नहीं किए हुए हैं। माफी मांगे तो सही ना, गलती को तस्लीम तो करें ना कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तब बंदा माफी मांगेगा। तस्लीम भी ना करे और माफ माफी मिल जाए तो फिर ऐसे माफी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से फिर उसके बाद मामला हो जाता है। फरमाते हैं कि जी, फ्रांस और जर्मनी ने अब नया कानून बनाया है कि गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली पीपल, हुकूमत बूढ़े बूढ़े लोगों की देखभाल खुद करेगी। तो वो तो भाई अमेरिका के अंदर भी यही कानून है, और उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह जो है ना, वो बाकी चीजें वैसे खत्म हो रही हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया। उनको पता है कि हमने भी बूढ़ा होना है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट खत्म हो जाएंगे तो फिर हम किधर जाएंगे। मुसलमान मुआशरा और दीन इस्लाम की तालीमात, दीन इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि शरीयत ने कहा कि चूंकि माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, तालीम दिलाई, उनको किसी काबिल बनाया बनाया, लिहाजा उनकी इस कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता, ठीक है। तो दीन इस्लाम ने तो वैसे ही ये भी, यानी अब जब आप असबाब तलाश, रीजंस तलाश करने के लिए जाएं तो ये दीज आर गुड रीजंस, लेकिन हमारा दीन इस्लाम तो इन रीजंस के बगैर भी माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहता है ना। अगर एक बाप छोड़ के चला गया, ठीक है ना, और फिर जो है वो आखिर में आ रहा है जब बच्चा बड़ा हो चुका है और सारी जो है वो उम्र उसकी गुजर चुकी है, तो ना तो उसने पाला पोसा, ना उसने उसको तालीम दिलाई, ना उसको किसी काबिल बनाया, लेकिन दीन इस्लाम के अंदर मुतलकन बाप, मुतलकन, चाहे उसने कुछ किया हो चाहे उसने ना किया हो, मुतलकन माँ, ठीक है, चाहे उसने कुछ किया हो चाहे उसने कुछ ना किया हो। तो यानी कहते हैं ना कि जितना हमारे लिए खैर हो सकती थी ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कर दी, लेकिन ना हमने अल्लाह ताला के साथ तो जितना हम कर सकते थे उतना भी हमने करने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। बाकी जी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, अल्लाह की तौफीक। वही तो, आप में से अगर किसी को कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो लिख के पूछ लीजिए। ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अलहमदुल्ला, सलाम वालेकुम।